ते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद से 19वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, राजा ययाति को मुक्ति का लाभ। श्लोक क्रमांक 21, 22, 23 और 24, चार श्लोक है। 21वां श्लोक इस प्रकार से है। इत्युक्त्वा नाहुषो जायाम, है क्या लास्ट है इसके अंदर? ठीक है, पहले श्लोक मैं पढ़ूंगा, लास्ट श्लोक साथ में पढ़ेंगे। इत्युक्त्वा नाहुषो जायाम तदीयम पूरवे वयः दत्त्वा स्वजरसं तस्माद् ददादे विगतस्पृहा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसका यौवन लौटाकर अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। जय हो। दिशि दक्षिण पूर्वस्याम ध्रुयुम दक्षिणतो यतुम प्रतिच्याम तर्वसूचक्र उदिच्याम अनुमिश्वरम। राजा ययाति ने अपने पुत्र ध्रुयु को दक्षिण पूर्व दिशा, अपने यदु को दक्षिण दिशा, अपने पुत्र तुर्वसु को पश्चिम दिशा और अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी दिशा दे दी, यानी कि उसका साम्राज्य दे दिया। इस तरह उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया। 23वां श्लोक। भूमंडलस्य सर्वस्य पुरुम अर्हतम विशाम अभिषिच्चाग्रजाम तस्य वशे स्थाप्य वनम ययो। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को सारे विश्व का सम्राट तथा सारे संपत्ति का स्वामी बना दिया और पुरु से बड़े अपने अन्य सारे पुत्रों को पुरु को अधित कर दिया। बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी अगला श्लोक साथ में पढ़ेंगे। आसेवितम वर्षपुगान षट वर्गम विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडम जातपक्ष इव द्विजः। आसेवितं वर्षपुगान षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडम जातपक्ष इव द्विजः। आसेवितं वर्षपुगान षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे पीडं नीडं जातपक्ष इव द्विजः। बताइए, बोलिए, इसको दोहराना है? ओके।
आसेवितं वर्षपुगान षड्वर्गं विषयेषु सह
ಪುರುಷೇ ನೀಡಂ ಜಾತಪಕ್ಷ ಇವ ದ್ವಿಜಃ. ಓಕೆ, ಆಸೇವಿತಂ ಸದೈವ ಸಲ್ಲಗ್ನ ರಹಕರ್ ವರ್ಷಪುಗಾನ್ ಅನೇಕಾನೇಕ ವರ್ಷೋಂತಕ್ ಷಡ್ ವರ್ಗಂ ಮನ್ ಸಮೇತ್ ಛಹೋ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕೆ ಲಿಯೇ ವಿಷಯೇಷು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗೋ ಸೇ ರಾಜಾ ಸಹ ರಾಜಾ ಯಯಾತಿನೇ ಕ್ಷಣೇನ ಏಕಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭೀತರ್ ಮುಮುಚೆ ಚೋಡ್ ದಿಯಾ ನೀಡಂ ಘೋಸ್ಲಾ ಜಾತಪಕ್ಷ ಜಿಸ್ಕೆ ಪಂಖ ಉಗ ಆಯೆ ಹೇ ಇವ ಸದೃಶ್ ದ್ವಿಜಃ ಪಕ್ಷಿ. ಹೇ ರಾಜಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಯಯಾತಿನೇ ಅನೇಕಾನೇಕ ವರ್ಷೋ ತಕ್ ವಿಷಯ ವಾಸನಾ ಕಾ ಭೋಗ ಕಿಯಾ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ವೇ ಇಸ್ಕೆ ಆದಿ ಥೇ, ಕಿಂತು ಉನ್ಹೋನೆ ಏಕ್ ಕ್ಷಣ ಕೆ ಭೀತರ್ ಅಪ್ನಾ ಸರ್ವಸ್ವ ತ್ಯಾಗ ದಿಯಾ, ಔರ್ ಜಿಸ್ ತರ ಪಂಖ ಉಗತೆ ಹೀ ಪಕ್ಷಿ ಅಪ್ನೆ ಘೋಸಲೆ ಸೇ ಉಡ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಭಗವಾನ್ ಸಾರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಯಾತಿ ಬದ್ಧ ಜೀವನ್ ಸೇ ಬಂಧನ್ ಸೇ ತುರಂತ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಗಯೇ. ಯೇ ಸಚ್ಮುಚ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೋ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ವೋ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೈ. ಪಕ್ಷಿ ಕಾ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಚ್ಚಾ ಜೋ ಖಾನೆ ಪೀನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಅಪ್ನೆ ಮಾತಾ ಪರ್ ನಿರ್ಭರ್ ರಹತಾ ಹೈ, ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಪರ್, ಪಂಖ ಉಗತೆ ಹೀ ಸಹಸಾ ಘೋಸಲೆ ಸೇ ಉಡ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಯದಿ ಕೋಯಿ ಪೂರ್ಣತಯಾ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಶರಣಾಗತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ತೋ ವೋ ತುರಂತ ಬದ್ಧ ಜೀವನ್ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, ಬದ್ಧ ಜೀವನ್ ಕೆ ಬಂಧನ್ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಜೈಸಾ ಕಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ನೇ ವಚನ್ ದಿಯಾ ಹೈ, ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಸಾಥ್ ಹೀ ಸಾಥ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ದೂಸರೆ ಸ್ಕಂದ ಕೆ ಚೌಥೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೇ 18ವೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ, ಕಿಣಾ ಕಿರಾತ ಹೂಣ ಆಂಧ್ರ ಪುಲಿಂದ ಪುಲ್ಕಷ ಆಭಿರಶುಂಭ ಯವನಾ ಖಸಾದಯ ಯೇನ್ಯೇ ಚ ಪಾಪ ಯತಪಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಿ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಕಿರಾಣ ಈ ಸಬ್ ಜಾತಿಯೋ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ. ಕಿರಾಣ, ಹೂನ್, ಆಂಧ್ರ, ಪುಲಿಂದ, ಪುಲ್ಕಷ, ಆಭೀರ, ಶುಂಭ, ಯವನ್, ಖಸ್ ಆದಿ ಜಾತಿಯ ತಥಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮೋ ಮೇ ಲಿಪ್ತ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಔರ್ ಅನ್ಯ ಲೋಗ್ ಯೇ ಸಬ್ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಶರಣ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ಶುದ್ಧ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ, ಕ್ಯೋಕಿ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಶಕ್ತಿ ಹೈ, ಮೈ ಉನ್ನೇ ಸಾಧರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಇತನೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈ ಕಿ ಯದಿ ವೇ ಚಾಹೆ ತೋ ಕಿಸಿ ಕಾ ಭೀ ತುರಂತ ಉದ್ಧಾರ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ತುರಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಯದಿ ಹಮ್ ಯಯಾತಿ ಕೆ ಭಾತಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಆದೇಶ ಕೋ ಮಾನ್ ಕರ್ ತುರಂತ ಉನ್ಕಿ ಶರಣ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ ಲೇ. ಮಹಾರಾಜ್ ಯಯಾತಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಥೇ, ಅತಏವ ಜೋ ಹಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ್ ಕೋ ವಿರಕ್ತ ಹೋನಾ ಚಾಹ ತ್ಯೋ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ್ ನೇ ಉನ್ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಕಿ. ಅತಏವ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಚರಣ ಕಮಲೋ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರ್ತೆ ಸಮಯ ಹಮೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ತಬ್ ಹಮ್ ಬದ್ಧ ಜೀವನ್ ಕೆ ಸಾರೇ ಬಂಧನ್ ಸೇ ತುರಂತ ಛೂಟ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಅಗಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಇಸ್ಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕೀ ಗೈ ಹೈ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿ ಮಿರಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭಿಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕದಾ ಮಯ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಕಥಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಿ, ರಾಜಾ ಯಯಾತಿ ಕಿ ಜೀವನ್ ಕಿ. ವೈಸೆ ದೇಖಾ ಜಾಯೆ ತೋ ಥೋಡಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಥಾ ಯೇ. ಏಕ ತರಫ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಲೀಲಾ ಹೈ, ಏಕ ತರಫ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜಿ ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಹೈ, ಭೀಷ್ಮದೇವ್ ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಹೈ, ಏಕ ತರಫ ययाति महाराज का चरित्र है, तो कभी कभी विरोधाभास का अनुभव होता है कि इतने कामुक व्यक्ति का इतना विस्तार में वर्णन इसमें दिया है, क्यों दिया है? क्या हमारी काम वासना को उद्दीपित करने का प्रयोजन है? श्रीमद् भागवत में एक भी ऐसी कथा या एक भी ऐसा प्रसंग या एक भी ऐसा सिद्धांत नहीं दिया गया है जो शुद्ध भक्ति से ना संलग्न हो। जो भी दिया है वो अमल यानी किसी भी कर्म ज्ञान सिद्धि उपासना इस प्रकार के जो भक्ति भक्ति इतर भक्ति के अलावा जो मार्ग है उसमें कोई संबंध श्रीमद् भागवत के किसी भी आख्यान में नहीं है। श्रीमद् भागवत भागवत के जितने भी आख्यान उपाख्यान है वो सब शुद्ध भक्ति संबंधित हैं, और शुद्ध भक्ति अगर उस आख्यान का निचोड़ नहीं है तो वो श्रीमद् भागवत में नहीं है। जितनी भी कथाएँ श्रीमद् भागवत में आती है वो केवल शुद्ध भक्ति के ही मार्ग से संबंधित हैं, इसलिए उसको अमलम पुराणम कहा गया। इसलिए हमको विश्वास होना चाहिए। कभी कभी हम पढ़ते हैं पांचवें स्कंद में तो पूरे भयंकर नरकों का वर्णन दिया है, कैसे पीटते हैं, कैसे जलाते हैं, कैसे तलते हैं, तो लगता है कि इसमें शुद्ध भक्ति किधर है। लेकिन वो सारा अगर आप पूरा भागवत पढ़ेंगे, पूरे भागवत को एक समुचित दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे शरीर के कई हिस्से होते हैं, उंगलियां भी होती है, नाखून भी होते हैं, आँख भी होते हैं, बाल भी होते हैं, पैर भी होते हैं, बहुत सारे इंद्रिय अंदर भी होते हैं बाहर भी होते हैं। लेकिन सभी इंद्रियों को अगर आप समुचित रूप में समझेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य का शरीर कार्य कैसे करता है। तो श्रीमद् भागवत को कभी भी एक ही कथानक को पकड़ के समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत एक पूरा एक सामुपायिक ग्रंथ है, और उसको आप अगर सबके आख्यानों के संबंध में देखेंगे एक दूसरे के लिए तो आपको उसका परिपूर्ण ज्ञान जो सुखदेव जी देना चाहते हैं वो आपको उसकी अनुभूति होगी। तो ये कथा बहुत रोचक है कि ययाति जैसे महान राजा होने पर भी उन्हें ये काम वासना बड़ा त्रस्त कर देती है, इतना तक हद गती है कि आज के ज़माने भी हम लोग ऐसा कोई किसी को व्यवहार करते हुए देखेंगे तो आज की तारीख में भी इतना घिलौना मानेंगे। तो हम कथा तो उस समय की पढ़ रहे जब लोग बहुत शुद्ध हुआ करते थे। क्या कर रहे हैं ययाति महाराज? ययाति महाराज स्त्री के आसक्ति से इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि बिल्कुल अपनी लज्जा छोड़कर अपने पुत्रों को भिक्षा मांग रहे हैं कि आपका युवा शरीर मुझे दे दो, ताकि आप मेरा वृद्ध शरीर ले लो और मैं आपके युवा शरीर के माध्यम से ये भोगते रहूं। जैसे कि हर एक व्यक्ति को विवाह करने की अवसर मिल जाता है और एक समय होता है जिसमें वो गृहस्थ जीवन का भगवान के आदेश के अनुसार अपना भोग ले सकते हैं। वो सब ले चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो अपना कोटा नहीं ले चुके हैं, लेकिन इतनी भूख है उनके अंदर, इतनी अनंत मात्रा में भूख है कि वो उससे इतने प्रभावित हैं कि उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने पुत्रों से युवा शरीर मांग रहे हैं, कोई मित्र से, कोई और कोई अनजान व्यक्ति से नहीं मांग रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो निर्लज्ज की तरह काम कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि वो पुत्र का अधिकार छीन रहे हैं, उनका भी जो अधिकार है इंद्रिय भोग का वो भी छीन रहे हैं, एक के बाद जा रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि उनको होश आया कि एक ने मना कर दिया तो अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बहुत घिलौना कार्य किया, मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं एक के बाद दूसरे बात गए, उसने मना कर दिया, तीसरे के पास गए उसने मना कर दिया, चौथे के पास गए उसने भी मना कर दिया, पांचवे ने उसको हाँ बोल दिया। तो ये श्रीमद् भागवत में क्यों दिया है कि अगर एक तरह से हम कितने महान होंगे, राजा होंगे, उच्च विद्या विभूषित होंगे और समाज में प्रतिष्ठित होंगे और हमारा पद बहुत प्रभावशाली होगा और हम बड़े सुंदर होंगे या और कोई ऐश्वर्य हमारे अंदर होंगे, ये इतना सब होने पर भी काम वासना नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। किसी भी एक घिलौने इंद्रिय भोग के रोग से हम पीड़ित रह सकते हैं। शास्त्र में कई ऐसे उदाहरण हैं। रावण जो ऐसा, उसके अंदर क्या कमी थी? उच्च कुल उत्पन्न था वो, उच्च विद्या विभूषित था, तपस्वी था, प्रचंड ज्ञानी था, शक्तिशाली था, सुंदर था, प्रभावशाली था, बलवान था, हर प्रकार से श्रेष्ठ था, लेकिन वो काम वासना का एक प्रतीक है, पर्सोनिफाइड लस्ट, क्या था उसके मन में इतना सब होने के बाद में?
दुनिया की हर एक स्त्री जो है और वो भोग्य और सुंदर है तो वो मेरी होनी चाहिए,
यही उसका विचार था। इसलिए अनंत जगह जहां जहां भी वो गया वहां वहां या तो उसने किसी को बलवश अपने वश में कर लिया, अभोग ले लिया, या तो जबरदस्ती उस पर बलात्कार किया। कैसे नहीं मिलता है, या तो प्रेम से पुकार रहा हूं आ जाओ, नहीं तो बल से आप पर कार्य किया जाएगा। और इस दौरान रावण ने कई सारे शाप अपने क्या कहते हैं उसको अपने संपत्ति की तरह इकट्ठा किया, बहुत बहुत बड़ा धन इकट्ठा किया शापों का। रंभा पर बलात्कार किया, वेदवती पर बलात्कार करने का प्रयास किया, उसका विनय भंग किया, तो सब जगह शाप 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 इकट्ठा हो गए। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। बाहर से हम लोग अच्छे कुल के उत्पन्न है, अच्छे विद्या विभूषित हैं, सुंदर हैं और अच्छे घर के अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन अंदर में क्या लड्डू पक रहे हैं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अभी भक्त का बेस्ट पहन के बैठे हुए हैं, धोती कुर्ता तिलक धारण किए हुए हैं, कि मन में क्या चल रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मन जो है हमारा जिसमें हम लोग चिंतन करते रहते, निरंतर चिंतन कहां पर होता है? मन में होता है। संकल्प अनंत संकल्प मन में चलते रहते हैं, है ना, उसका स्थान मन है। थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, इच्छा करना महसूस करना और विचार करते रहना, ये मन का सब मन का विचार है। मन के विचारों में संकल्प चलते रहते हैं, अभी मैं पकौड़े खाऊंगा, अभी मैं जलेबी खाऊंगा, अभी मैं ये वस्त्र पहनूंगा, अभी मैं वो खरीदूंगा, अभी मैं यहाँ देखूंगा, अभी वहां जाऊंगा। ऐसे ही काम वासना का चिंतन दिन भर चलते रहता है मन में, कैसे भोगूंगा मैं आज, किस तरह से भोगूंगा। तो ये संकल्प जो है ये जब तक कृष्ण के लिए नहीं होते हैं तब तक जीव अनंत काल तक इस दुनिया के जंजाल में फंसा रहता है, बार बार आते रहता है। चाहे कितने भी वस्त्र बदलो, आप ब्रह्मचारी के पहनो, गृहस्थ के पहनो, सन्यासी के पहनो, फिर ब्रह्मचारी के पहनो, फिर सन्यासी के पहनो, फिर परम क्या कहते हैं परमहंस स्तर पर पहुंचो, परिव्रजकाचार्य बनो, ऐसे अनंत वस्त्र हम बदले कर सकते हैं, लेकिन जब तक मन के संकल्प श्री कृष्ण के आनंद के लिए नहीं बनते हैं तब तक दोबारा आना ही है, कोई भी छूटता नहीं है। आप देखिए वो विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तप किया उन्होंने, भाव स्थिति में पहुंच गए थे वो, लेकिन एक घुंघरू बज गए और गए काम से। आगे का इतिहास आप जानते हैं। भरत महाराज कहते इतने उच्च अवस्था में थे वो कि बहुत ही एकदम कृष्ण के साथ ही थे, थोड़ा सा ही बाकी था उनका, थोड़ा सा ही बाकी था। उस बीच में हिरण आ गया और उनकी चेतना हिरण में स्थित हो गई, और कितना समय बर्बाद हो गया उसके अंदर। तो स्त्री एक ही हमारे लिए लोभ नहीं है, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये एक ही प्रलोभन नहीं है, कई प्रकार के विषय दुनिया में है। कुछ लोग तो आप देखेंगे पॉलिटिशियन लोग जो हैं उनको स्त्री से कोई लेना देना नहीं, अधिकार सत्ता शक्ति पावर उसके अंदर लगे रहते हो, उनको ये धन दौलत में भी रुचि नहीं होती है। एक स्तर पर जब तृप्ति हो जाते हैं तो धन दौलत स्त्री सब छोड़ देते हैं और केवल खुशी के लिए जीते हैं। तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये भी एक प्रकार की वासना है, शरीर का भोग तो सबसे निचली वासना है, उसके ऊपर भी कई वासना है। अभी एक हिरण के प्रति आसक्त होने से एक पूरा जन्म उनका वेस्ट हो गया, मनुष्य का तो हो ही गया, एक और जन्म उनका वेस्ट हो गया, इतना समय बर्बाद हो गया। कब के भगवान के पास जा चुके होते वो, 3 जन्म हो गए एक जन्म के बदले में, कुछ सालों के बदले में 3 जन्म का हिसाब करना पड़ा, और तब भगवान की दया से होश में रहे, अपने अनुभूति के लिए क्या कहते हैं प्रामाणिक रहे, जो अनुभूति थी उसके लिए वो लगे रहे उसके अंदर, उसको छोड़कर फिर भागे नहीं कहीं, गलती हो गई तो उसको याद रखते हुए दोबारा गलती नहीं किया और लगे रहे अपने संकल्प पर। एक संकल्प किया, कभी कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, केवल वही होना चाहिए बस, तब जाकर इतना सफर करके फिर भगवान की प्राप्ति हुई। इतना कठिन है ये, तो ये नहीं कि अभी हमने दीक्षा ले लिया और अभी बस 10-20 साल 50 साल हो गए तभी तो हम लोग सेफ हो गए, अभी कोई चिंता करने की बात नहीं। वी आर नॉट सिक्योर, हमको हर समय शरणागति की प्रक्रिया का स्वीकार करके आश्रय ग्रहण करते रहना चाहिए। रोज सवेरे उठकर आश्रय लेना चाहिए। कल लिया था तो आज के लिए पर्याप्त नहीं हो, एक घंटा पहले लिया तो आज एक घंटा के बाद में पर्याप्त नहीं हो। हर क्षण, हर घंटे, हर दिन नियमित रूप से भगवान के प्रतिनिधि के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। हर दिन रिकन्फर्म करना चाहिए कि मैं आपका हूँ। अपना बोली अपना बना लो, रोज ठाकुर जी को कहना है अपना बना लो, क्योंकि तो बीच में जो भी उतना होता है भगवान की इच्छा से ऐसी घटनाएं होती है, क्योंकि तो माया देवी जो है ना वो जानती है कि ये बंदा मेरे हाथ से छूट रहा है। जब तक उसके गोद में छुपा हुआ है तो वो अपने गोद में रखे दूसरे को देखते थे जो छोटा हुआ है, और जो बड़ी तेजी से छूट कर भाग रहा है भगवान की ओर उसको तो वो छोड़ती नहीं है, एंड तक कोशिश करेगी। और एंड तक अगर भक्त भगवान के भक्त के आश्रय में, गुरु जी के आश्रय में, सेवा में लगा रहेगा तो ही वो एंड तक बचा रहेगा। तो एंड में भी वो पूछ पकड़ के खींच सकती है, जरा सा बोलते ना वो क्या, नजर हटी दुर्घटना घटी, एक क्षण के लिए भी काफी है। ड्राइविंग करते समय हाईवे पर एक क्षण के लिए भी झपकी लग गई तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, जिंदगी कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। वो जो हाईवे का ड्राइविंग है 100 किलोमीटर पर स्पीड का, उसी तरह से हमारा भक्ति का जीवन भी है। एक क्षण भी हम लोग दुर्लक्ष करते हैं अगर हम हमारे लक्ष्य से ओर से, तो हमारा जीवन, भक्ति का जीवन नष्ट हो सकता है, विध्वंस हो सकता है उसका। जो पाया हुआ है वो नष्ट नहीं होगा, लेकिन अभी कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, फिर वापस उस रास्ते में आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ययाति का यही प्रॉब्लम है, बता रहे हैं उनके उदाहरण से हमें कि ये ऐसी चीज है जिसमें आप जितना तृप्ति करेंगे उतना आग और भड़केगी। कभी कभी विश्वास नहीं होता इस बात पर, एक बार अभी वो जलेबी खा लेता हूं, बस एक बार ऐसा लगता है। लेकिन माया कैसा है ना, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे या दिकटस्थ माया तरे, धोरे नहीं सहजता से, धरे नहीं झपटिया धोरे, ऐसा पकड़ती है कि बात बहुत समर्पक शब्द यूज किया है। झपटिया धोरे मतलब क्या, झपट कर पकड़ती हो। जैसे हमारे घर में चूहा आता है तो हम कैसे चूहे के पीछे पकड़ते, ऐसा जाके पकड़ते हैं कि वो या तो पकड़ में ही मर जाए या तो पकड़ के बाद में उसको मार दे, लेकिन ऐसा पकड़ते हैं कि विद डिटर्मिनेशन। और हम तो इतना कुशल नहीं है चूहे के भागने के लिए पीछे, लेकिन माया देवी बहुत कुशल है। वो सूक्ष्म स्थूल हर बीच तरीके से हमें बहुत सुंदर तरीके से पकड़ सकती है, और बाद में उसके ग्रिप में कोई आ गया तो छूट नहीं सकता है। तो ये बार बार अभी देखे इतने तरीके से अपने, आज भी ये सोचकर बहुत घृणा मन में उत्पन्न हुई थी कि ये सोच सकते नहीं कि मैं मेरे पुत्र से पूछ रहा हूं कि तुम्हारा भोग मुझे चाहिए। अभी ये तो मुमकिन भी नहीं है ऐसे करना, लेकिन उसमें मुमकिन था तो जाके पूछ रहे हैं। और उसके बाद में अपने पुत्र का यौवन लेकर कितने वर्ष उन्होंने भोग लिया, कितना वर्ष भोग लिया, पुत्र बुढ़ा होके बन मरा। सोचो आप, तो यौवन जवान यौवन अवस्था में था पुत्र, वो बुढ़े अवस्था में रहा, उसको कोई भोग करने की शक्ति नहीं, और पिता जो है वो अनंत मात्रा में युवा अवस्था में रहकर भोग ले रहे हैं, भोग ले रहे हैं, भोग ले रहे हैं, भोग ले रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान थे ययाति राजा, उनको पता चला कि इतने साल भोग लेने के पश्चात ये आग तो शमती नहीं है, तो कभी ना कभी तो समाप्त हो जाए या तृप्ति हो जाए, लेकिन बढ़ रही है दिन ब दिन, समाप्त होने के बदले में बढ़ रही है। जैसे हम लोग यज्ञ करते ना तो हम लोग कभी कभी ज़्यादा मात्रा में घी डाल देते हैं, तो वो घी से भी अग्नि कभी कभी बुझ जाती है, लेकिन लगता है कि बुझ गई अभी कुछ करो, लेकिन कुछ ही देर में वो ऐसी भड़कती है कि आप देखते रह जाएंगे उसको। ये रोज का अनुभव है यज्ञ करते समय, ज़्यादा घी गिर गया तो वो लगता है कि बुझ गया, लेकिन कुछ ही देर में ऐसे वो भक्ति वापस आती है। वैसे ही काम वासना का ईंधन मिलेगा तो अग्नि कभी बुझ सकती है क्या? अब जलती हुई आग में एक लीटर पेट्रोल डाल देंगे तो थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुझ गई है, लेकिन वो 10-15 गुना 50 गुना भगभग के ऊपर आ जाएगी। वैसे अंदर की काम वास्ते तो आचार्य लोग तो क्या कहते हैं ना, वो शंख करते ऐसे बोलते हैं मराठी में, शंख कर रहे मतलब जोरदार घोषणा दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं माइक्रोफोन लाउड स्पीकर से कि ये चीजें, ये भोग की लालसा जो है वो भोग की वस्तुओं को देकर तृप्त नहीं हो सकती। अनंत प्रकार अनंत सालों से अनंत युगों से चिल्ला रहे हैं वो, ये भ्रम है कि भोग की अग्नि में भोग की वस्तुओं को देने के बाद भोग अग्नि नष्ट हो जाएगी, ये भूल भुलैया, ये तो एक प्रकार का भ्रम है। ऐसे आचार्य लोग चिल्ला रहे हैं युगों युगों से, सदियों से चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें हर एक व्यक्ति को लगता है कि थोड़ा सा मिल जाए तो हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब इतनी खुजली आ रही है, थोड़ा सा खुजा दूंगा ठीक हो जाएगा। आप कभी ट्राई कीजिए, मच्छर काटता है तो आप खुजाएंगे और वो खुजली बढ़ जाती है, आप लोगों को और खुजाते रहे खुजाते रहे खुजाते रहे, वो चर्म रोग की तरह है, आप उसको छेड़ो मत, थोड़ा सहन करो तो फिर वो खुजली जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन आप छेड़ेंगे उसको तो फिर आप खुजाते रहेंगे, आधा पौना घंटा खुजाते रहेंगे, लाल लाल हो जाएगा, वो खून निकलेगा, फिर भी आपको लगेगा कि और खुजाना चाहिए उसको। ऐसा ही चर्म रोग से काम वासना की तुलना की गई है। तो क्या करें उसको, मात्रा स्पर्शांश तो कौनते या शीतोष्ण सुख दखा। ऐसे ही हम गर्मी सर्दी को सहन कर लेते ना, थोड़ा थोड़ा अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं, वैसे मान अपमान को भी सहते हैं, वैसे गरीबी और अमीरी को भी टॉलरेट कर लेते हैं, उसी तरह से इसको टॉलरेट करना चाहिए। और जैसे ही एक उदाहरण आचार्यगण देते हैं, वो सर्कस का उदाहरण देते हैं हम लोग हमेशा, सर्कस में जंगल का एक खूंखार शेर हम पकड़ के लाते हैं सर्कस के लिए। अभी वो खूंखार जो शेर है वो क्या आपके मानने वाला है क्या? उसको आपको आगे विचार है कि इसको मैं अग्नि के चक्र से कूदाने के लिए ट्रेनिंग दूंगा, उसको मैं एक छोटे टेबल पर चारों पैर करके खड़ा कर दूंगा, उसके मैं समरसॉल्ट करवाऊंगा, उससे मैं डांस करवाऊंगा, ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन करते कैसे उसको, पहले उसको 7 दिन भूखा रखते हैं, वो बहुत जोर से चिल्लाता है, उसके चिल्लाना अगर आप अगले कमरे में सुनेंगे ना तो वहां पर भी पसीना निकल जाएगा, इतना जोर से चिल्लाएगा वो। लेकिन रूल क्या है उसका, इग्नोर, उस पर ध्यान मत दो, चिल्लाने दो उसको। फिर वो पहले दिन जितना जोर से चिल्लाएगा दूसरे दिन उसकी चिल्लाहट में थोड़ी कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि भोजन तो नहीं ना, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा उसका। फिर और तीसरे दिन चिल्लाएगा तो उसका और आवाज़ कम हो जाएगा, फिर 7वें दिन म्याऊ ऐसा करेगा वो, आवाज़ ही नहीं निकलेगी उसकी, फिर भी उसको कुछ देना नहीं है, फिर वो ऐसे हो जाएगा कि जैसे कि मर ही गया समझो, कोई शक्ति नहीं बची उसके बाद। फिर जो मास्टर है वो उसके सामने एक टुकड़ा मांस का फेंकता है, वो झपक पड़ता है उसके ऊपर, लेकिन उसको तो ऐसे 50 मांस टुकड़े खाने की भूख लगी हुई है, थोड़ा सा देते हैं, फिर वो 1 दिन के बाद थोड़ा सा और देते हैं, फिर जाके चाबुक लगाते हैं तो समझता है कि ये मुझे मांस देने वाला है, तो उसका वो गुलाम बन जाता है, उसकी जो वासना की शक्ति है खाने की उसी को दबा देते हैं वो लोग, फिर वो इतने से मांस के लिए गुलाम बन जाता है, फिर उसको नचाते हैं। क्या प्रिंसिपल है, इतना खूंखार जानवर में इतनी भयंकर शक्ति है कि ऐसे एक मास्टर जैसे 100 मास्टर को एक साथ खा सकता है, वो एक साथ मार मृत्यु दंड दे सकता है उनको, इतनी शक्ति है उसके पास। लेकिन एक उसकी भूख को अगर आप भोजन नहीं देंगे उसको तो वो आपके आदि बन जाएगा, इतने से मास्टर रिंग मास्टर का आदि बन जाएगा वो, इतना खूंखार जानवर। वैसे ही हमारे काम वासना वो खूंखार जानवर की तरह है, उसको फीड देते रहेंगे आप तो आपको खाते रहेगा वो, लेकिन उसको भूखा रखेंगे तो कमजोर हो जाएगा वो, फिर उसकी आवाज नहीं सताएगी आपको। और आचार्यगण दो एक और उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं हमारे अंदर 2 कुत्ते हैं, एक अच्छा कुत्ता भक्ति वाला और एक माया वाला भोग लेने वाला कुत्ता, और दोनों भोगते रहते हैं, और हम लोग माया वाले कुत्ते को भोजन देते रहते हैं तो वो हष्टपुष्ट होता है, वो जितना हष्टपुष्ट होता है उतना जोर से चिल्लाता है, तो उतना जोर से आप उसको खाना खिलाते हो फिर वो और हष्टपुष्ट होता है। और ये भक्ति वाला कुत्ता जो है चिल्ला चिल्ला के थक जा के एक दिन ऐसे क्या जैसे मुर्दा जैसे बन जाता है। लेकिन जिस दिन आप तय करते हो कि माया वाले कुत्ते को नहीं भोजन देना है, भक्ति वाले कुत्ते को देना है, तो माया वाले कुत्ते की भौंकना जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और ये कुत्ता बलवान हो जाता है। तो गुड डॉग एंड बैड डॉग, ऐसा ये उदाहरण दिया था, दृष्टांत देता है। तो हम लोगों को प्रयत्न पूर्वक भक्ति वाले अंदर जो जानवर है उसको हमको फीड करना चाहिए, उसको भोग देना चाहिए ताकि वो हष्टपुष्ट हो जाए, और इसको नहीं देंगे तो ये कमजोर हो जाएगा। कोई तरीका नहीं है इसके अलावा, खूंखार जानवर को भूखा रखने के अलावा उसको कंट्रोल में लाने का और कोई तरीका नहीं है। डिप्राइवेशन कहते हैं उसको, भूखा रखना। भूखा रखने से एक दिन भूख भी नष्ट हो जाती है। यही तो शरीर का भी नियम ऐसा ही है। अभी शरीर का नियम कैसा है मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल बैकग्राउंड से बताता हूँ। शरीर ऐसा है कि आप शरीर को ट्रेन करके 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 केवल एक रोटी सुबह एक रोटी शाम भी जी सकते हो। जैसे हमारे गुरुदेव हिमालय में तपस्या कर रहे थे तो दिन में एक एक गाजर खाते थे, दिन भर ध्यान करते थे गंगा जी में बैठकर, एक गाजर। वो जवान आदमी, ऐसा नहीं कि वो भाई 80 साल का बुढ़ा है तो क्या भूख ही लगती नहीं उसको। तो ऐसा कहा गया कि मेडिकल रूप में शरीर को आप जैसा मोल्ड करोगे वैसा वो मोल्ड हो जाएगा। जैसे कि आंध्र के अंदर एक ऋषि मुनि थे, भक्त थे भगवान के। आंध्र का शरीर मतलब गर्मी होती है उसके अंदर, कितना सारा उसका आदत है ना गर्मी वाले शरीर में है। तो उन्होंने एक दिन निश्चय कर लिया कि मैं जहां पर भी रहूंगा वहां पर 3 बार नदी में रहकर स्नान करके नदी में खड़े रहकर मैं गायत्री जप करूंगा। और यथावकाश वो फिर वो हरिद्वार गए, वहां से वो ऊपर चलते 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 बद्रीनाथ के अलकनंदा नदी के किनारे रहने लगे। और आप जानते हैं ना वहां पर उंगली डालना भी मुश्किल है, उंगली डालेंगे पानी के अंदर तो बाहर निकालेंगे लगा कि उंगली नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। इतना संवेदना ठंड के मारे नष्ट हो जाती है। इतनी ठंड में भी वो आंध्र शरीर वाले संत जो है वो बद्रीनाथ के अलकनंदा में 3 बार ठंड के मौसम में भी बर्फीले मौसम में भी स्नान करके पानी में खड़े रहकर गायत्री जप कर रहे हैं। इसका मतलब कितना शरीर को उन्होंने ट्रेन कर दिया। या तो शरीर को आप दिन में 6 बार खाने का ट्रेनिंग दे सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या तो दिन में 2 बार खाने का ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसा आपको आपकी इच्छा होगी ना वैसे शरीर आपको अपने आपको एडजस्ट करते जाएगा। पेट है ना, पेट हमारा उसका एक वॉल्यूम होता है इतना। तो अगर आप इच्छा है कि आपको बहुत खाना है तो पेट भी अपना आकार बढ़ाएगा और आपकी इच्छाओं को पूरी करने का उसका प्रयास करेगा। उसका लिमिट है लेकिन कोशिश करेगा पेट बढ़ाने का अपनी साइज। जैसे आपको लगता है कि मैं दिन में 12 घंटे सो जाऊं तो पहले पहले नींद नहीं आएगी, धीरे धीरे आपको 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा भी नींद आने लगेगी। शरीर एडजस्ट कर लेगा उसको, हार्मोन ग्लैंड एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। मन उसका नियंत्रक है, मन क्या चाहता है वैसे शरीर को मोल्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना वजन 50 किलो कर सकते हो, चाहे तो 125 किलो भी कर सकते हो। ऐसा ये शरीर है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है। वैसे शरीर को बोलेंगे काम वासना नहीं कल से तो थोड़ा कष्ट देगा शरीर, लेकिन बाद में उसको एडजस्ट हो जाएगा। शरीर को बोलेंगे आज से एकादशी का व्रत करना है, अरे जिंदगी भर कभी व्रत नहीं किया। तो पहले दिन तो हम लोग व्रत किए थे ना तो ब्लैंकेट ओढ़ के हॉस्टल में सोए थे, वे शक्ति नहीं है, फल खाके कैसे जिएंगे। मुझे बताया गया था दयाराम प्रभु ने कि आप चिंता मत करो, आप सारे एकादशी का अन्न जो है दिल भर के खाओ। फिर भी हमको इतनी कमजोरी आ गई थी कि हम ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए, इतनी कमजोरी थी क्योंकि 2-2 प्लेट साथ में खाने की 4 बार खाने की आदत थी, उसमें आप एकादशी का व्रत करा रहे हो। लेकिन आज क्या हो गया है, इतने साल के बाद में एकादशी को भूख ही लगती नहीं है। भाई शरीर कहाँ था और आज की स्थिति में आ गया वो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो हर एकादशी निर्जला करते हैं, जन्माष्टमी का वेट नहीं करते हैं, हर एकादशी निर्जला ही करते हैं। तो जब निर्जला एकादशी आती है तो कोई नया नहीं है उसमें, रोज का एकादशी वैसे ही होती। शरीर आपको जैसा चाहे वैसा बन सकता है। और अगर आपको शुद्ध भक्त भगवान का बनना है, काम वासना रहित बनना है, तो भी शरीर आपको कोऑपरेट करेगा, खाली मन को उसको नियंत्रित करना है। कुत्ते को ऐसा नियंत्रित करते हैं, प्रभुपाद जी ने एक बार दिखाया था भक्तों को, हैट करके कुत्ता एकदम चुप हो गया था। और 6 फुट का जो भक्त था उसके ऊपर वो जोरदार भौंक रहा था, और 6 फुट का भक्त जो डर रहा था विजयेशी भक्त उसको देखकर। फिर प्रभुपाद जी छोटे से प्रभुपाद जी सामने आए, हैट किया तो कुत्ता एकदम करके भाग गया। तो प्रभुपाद ने बताया कि 6 फुट शरीर से काम नहीं होता है, यहाँ पर जिगर होना चाहिए। हाँ उन्होंने दिखाया ऐसे। वैसे ही गुरुदेव की किताब में भी, वैसे हिमालय में जब ही उनका 1 महीने का व्रत था और 1 महीने के व्रत के बाद में किसी ने उनको 1 रुपया डोनेशन दिया तो उन्होंने 1 रुपये के चने खरीद लिए पैकेट भर के, और अभी वो खाने को जाने ही वाले थे 1 महीने के बाद, अपनी फीस्ट करने ही वाले थे तो बंदर आए और बंदर ने सारे चने छीन लिए। आंखों के सामने, हाँ, कुछ चने नीचे गिरे, वो उसको उठाने के जाने के पहले कुछ बंदर आके वो भी उठा के लेके गए, और एक दो चने ऐसे हाथ में बच गए, एक पूरे पैकेट में। तो सब देख रहे हैं अभी क्या करें, वो सब कुछ नहीं कर सकते ना अभी, बंदर को क्या कर सकते। उतने से एक वहां पर एक छोटा सा गांव का लड़का आया, ऐसा उसने चिल्लाया वो कि बंदर पूरा पैकेट छोड़ के भाग गया। तो क्या था वो, उसका मतलब क्या है? ऐसे ही एक बड़े फॉरेनर के हाथ में बहुत सारे फल के थैली आती, तो हिमालय में बंदर ने सब कुछ छीन लिया और वो बेचारा परेशान हो गया और डर के मारे भाग गया। तो गांव का एक लड़का आया, दो तीन ऐसी आवाज लगाई, बंदर सब फल छोड़ के भाग गए, सारे फल लाके वो फॉरेनर को दे दिए उसने। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मन के अंदर शक्ति होनी चाहिए। शरीर बड़ा होने से क्या होता है, उसके अंदर सारी काम वासनाएं, सारी इच्छाएं, भोग लालसाएं भरी रह सकती है उसके अंदर। मन अगर निश्चित होगा तो मन को शक्ति कैसे दी जाए, कमजोर मन को कैसे बल दिया जाए, वो है भगवान का नाम। और जिनका अपने मन पर नियंत्रण है ऐसे लोगों का संग प्राप्त होगा, तो हमारा कमजोर मन जो हो गुलाम बन के रह रहा है वो भी मालिक बन के रह सकता है। मालिक बनना भी इसकी अहंकार के लिए नहीं मालिक बनना है, मालिक मन का इंद्रियों का बनना है उनकी सेवा के लिए। मन को नियंत्रित करने का कारण क्या है, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, देखो मेरा मन में कितनी शक्ति है, मैं चार दिन भूखा रह सकता हूं, मैं रुपयों को छूता नहीं हूं, ऐसे अहंकार के लिए नहीं है वो। वो मन को नियंत्रण करना है भगवान की सेवा के लिए, ताकि हमारे भटके हुए इंद्रिय जो हैं वो उनकी सेवा में लग जाए, इसलिए मन को नियंत्रण करना है। तो ययाति महाराज यहां पर, एक समय आया भगवान की दया से, उनको पता चला कि मैंने इतने हजारों दिन मैंने भोग लेने का, अनंत भोग लेने का, मतलब क्या बोलते हैं निरंकुश का मतलब क्या है, अनकंट्रोल्ड, मतलब जब चाहे तभी, कोई नियम नहीं उसके लिए, नियम थोड़ ओढ़ कर जब जितना चाहे उतना खा लो, इस प्रकार से भोग लिया उन्होंने स्त्री शरीर का। लेकिन उनके जब उन्होंने जहां शुरुआत की थी अपने पुत्र का युवा शरीर लेकर, वो तब जितनी काम वासना थी उससे भी कई गुना अधिक काम वासना इतने सालों के बाद भी वहां पर विराजमान थी। तो वो तभी उनको ये अनुभूति हुई कि ये बेकार चीज़ है, इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, मैं और भी अगर किसी लोगों से यौवन प्राप्त करा लूँ तभी भी मेरा ये काम नहीं हो सकता है। तो ये अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण थी। तब उन्हें तुरंत एक क्षण में अपने पुत्र को युवा शरीर वापस दे दिया, वृद्ध शरीर स्वीकार कर लिया। तत्क्षण अपने पत्नी को वो शी गोट ही गोट की कथा बताई, उनको भी इंस्पायर किया और चले गए वो। प्रभुपाद जी बताते हैं जिस क्षण हमें ये अनुभूति होगी कि ये सब व्यर्थ है, उस समय ही उसी मन के अनुभूति का पल्लू पकड़ के हमको भगवान के चरण में शरण लेना चाहिए। क्योंकि कितने क्षण वो अनुभूति टिकेगी मन में इसका भी भरोसा नहीं है। हाँ, जब बहुत सारा खाना खा लिया, पेट इतना भर गया कि और इच्छा होने पर भी खा सकते नहीं है, तो अन्न से विरक्ति आ सकती है आपको, बोले अन्न क्या चीज़ है, अन्न में कोई रुचि नहीं है, ऐसा लग सकता है। जैसे वो हजम हो गया तुरंत भूख लगेगी आपको दोबारा, है ना। स्मशान में जाएंगे तो इतनी विरक्ति आएगी कि क्या कहें, बोले जीवन तो व्यर्थ है, जीवन में कोई अर्थ नहीं है, सब कुछ नश्वर है, क्यों हम तड़प रहे हैं, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। सारे सैद्धांतिक बातें हम लोग स्मशान में करते हैं, घर पे आके स्नान करते हैं, दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं। इसलिए जब तक वो अनुभूति आ गई है उसका पल्लू पकड़ के तुरंत हमको निश्चय करना चाहिए, बस अभी बंद। क्योंकि इतने सारे आचार्यों ने अपने उदाहरण से दिखाया है कि ये चीज समाप्त होने नहीं है, उसको भोग पूरा देते देते रहेंगे तो बंद होने वाली नहीं है, वो और खोल के उठने वाली है। इसलिए हम लोग सब लोग भाग्यवान लोग हैं क्योंकि हमें भगवान का नाम मिला है, हम लोगों को साधना का एक प्रोग्राम मिला हुआ है, हमको प्रामाणिक भक्तों का आश्रय मिला हुआ है, उनको एक लक्ष्य मिला हुआ है, और संघ हमारा अच्छा है, अच्छे लोगों के साथ में बैठते हैं जो पापी नहीं है, इतने सारे हमारे लिए वरदान हैं। तो उनका आश्रय लेकर अगर परिणामकारक तरीके से अगर हम इस विधि को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो बुरा कुत्ता है अंदर का वो कमज़ोर हो जाएगा एक दिन और मर जाएगा एक दिन, निश्चित रूप से। आप लोगों को अपने दिल में झांक के देखिए, जब हम भक्त बने तो हमारी क्या अवस्था थी और अभी 10 साल साधना करने के बाद में क्या हुआ है। निश्चित रूप से पता चलेगा आपको कि उतना मुझे क्रोध आया करता था, अभी थोड़ा कम आता है। उतना मुझे खाने में इतनी वासना थी खाने पर, अभी वो कम हो गई है। अभी वो ऐसे जानवर की तरह नहीं खाता, मैं वो इंसान की तरह खाता हूँ। अभी मैं जो चीज़ देखती हैं, हाँ, रास्ते में कितनी चीज़ें थी हम जो पुराने ज़माने में खाते थे, जैसे ही आता था वो ठेला तो खड़ा रहकर तुरंत गाड़ी करके उसको खाते थे। अभी वही ठेले आते हैं रास्ते में, हम लोग रुकते नहीं। अभी हम लोग घर में उसको जितना भी हमारे पास है भोग लगा के खाते हैं उसको, क्योंकि हमको पता है, हमको पता है कि वो खाएगा तो रोग हो जाएगा। वो गंदे आदमी बनाते हैं, उसका पानी गंदा रहता है, उसका हाथ गंदे रहते हैं, उसमें से टाइफॉइड, उसमें वायरस, सारे हर हजार बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। को अनुभूति हो गई है, ज्ञान हो गया, इसलिए वो चमचमाता हुआ चमकता हुआ वस्तु जो है वो आपको बुला रहा है, खाओ खाओ, तो भी हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि अभी हमको ज्ञान हो गया है उस बात का कि ये ठीक नहीं है। उसी प्रकार से कल की जो घृणा समान, कल की जो बहुत आकर्षक वस्तु थी, वो आज घृणा समान हो सकती है। मैं आपको एक आखिरी उदाहरण दूंगा इसका। गिरिराज महाराज हमारे, जब गिरिराज दास ब्रह्मचारी थे ना, तभी जुहू में रहा करते थे और दिन रात मेहनत करते थे। दिन रात वहां पर काम करते थे और बहुत युवा अवस्था में, बहुत सुंदर युवक थे विदेशी। तो एक पत्रकार आई उनके पास, स्त्री। उन्होंने कहा कि आप इतने, जैसे हरिदास ठाकुर की कथा हुई ना, वैसे उनके साथ में कथा हुई है, अनेक बार हुई, एक बार भी नहीं हुई है। तो एक कथा में ऐसे कि वो पूछ रही है कि आप इतने सुंदर युवक हो, विदेशी हो, इतने अच्छे कुल से हो, धनवान घर से हो, इधर ब्रह्मचारी बनकर क्यों रह रहे हो आप? तो कह रहे मैं गुरु जी का शिष्य बना हूँ, मुझे अभी इसमें रुचि नहीं है। तो वो क्या पूछती उसको, वो पूछ, समझो आप जंगल में हो, एकांत में कहीं, बहुत सुंदर ठंड का वातावरण है, बहुत सुंदर खुशबू बह रही है, निशिगंधा रजनीगंधा की खुशबू आ रही है, और आप अकेले हो, कोई नहीं है वहाँ पर, और एक सुंदर लावण्यवती स्त्री वहाँ पर बहुत सुंदर श्रृंगार करके केवल अकेली आपको आके बोलती है कि मुझे आप भोग लो, तो आप क्या करेंगे? तभी ये तो गूगली क्वेश्चन है ना, ये इसको उत्तर देना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं देख रहा, बार बार दोहरा रही है वो, कोई नहीं देख रहा है, और वो आपको पूरी तरह से प्रपोज कर रही है कि आप मुझे भोग लो। कोई देखेगा नहीं, कोई कहेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं किसी को बताऊंगी नहीं, सारा चीज एकदम अनुकूल है आपके लिए, तब क्या करेंगे आप? तो उन्होंने जो उत्तर दिया है ना, वो सबके लिए एक आदर्श उत्तर है, अगर वैसे अनुभूति है तो। उन्होंने क्या उत्तर दिया, समझो आप मुझे डीप जंगल में लेके जाएंगे, कोई भी वहां पर नहीं होगा, और आप मुझे एक, क्या कहते हैं उसको, लैटरिन, विष्ठा, संस्कृत में कहते हैं ना विष्ठा, जो हम त्याग सुबह में त्याग देते हैं, वो कुछ कोई मुझे सुंदर पैकेज में लाके देगा, बोलेगा इसको खाओ, तो मैं खाऊंगा उसको। तो ये जो आप कह रहे हो, वो मेरे लिए स्टूल है, वो मेरे लिए विष्ठा है, वो आप भरे पब्लिक में लाके दोगे या एकांत में लाके दोगे, दोनों मेरे लिए खाने लायक नहीं है वो। तो क्या बोलेगी वो, चले गए तुरंत वहां से। जिस चीज को हम ऐसा जब बलपूर्वक त्याग करने का प्रयास कर रहे हैं, बलपूर्वक, और इंद्रियों को बोले नहीं नहीं नहीं, मन बोल रहा है खाओ खाओ खाओ, बोलो नहीं नहीं नहीं, ऐसा इतना संघर्ष चल रहा है, तो वो अगर जंगल में अकेले मिलेगा तो शायद वो यहां वहां देखेगा तुरंत खा लेगा उसको। लेकिन जो वस्तु को स्टूल समझकर त्याग दिया है, वो दोबारा आकर आपको प्रस्तुत किया जाए, तो जंगल में हो या पब्लिक में हो, आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जो आप उल्टी करते ना, वॉमिट, बहुत बढ़िया खाना था वो 10 मिनट पहले, इतना आकर्षक था, वो खा लिया आपने, और पता नहीं ज़्यादा खा लिया कम खा लिया, उसको इन्फेक्शन था, तो आप उल्टी करेंगे, तो दोबारा वो मेरा गुलाब जामुन मेरा जलेबी करके खा सकते हैं क्या उसको? तो कहने का मतलब, साधु लोग क्या सोचते हैं कि जिसको हमने त्याग दिया है विष्ठा की तरह, उल्टी की तरह, स्टूल की तरह, उसको क्या दोबारा हम खा सकते हैं क्या? लेकिन ऐसी अनुभूति उनके अंदर थी, इसलिए वो उत्तर दे पाए। हम होंगे तो पता नहीं, बोलेंगे जरूर ऐसे ऐसे गिरिराज महाराज का उदाहरण देंगे, लेकिन हमारे पर ऐसा मौका आएगा तो हम उसका तुरंत लाभ ले लेंगे। तो बाद में पता नहीं वो मौका मिलेगा कि नहीं, इतने साल से त्याग कर चुके हैं, ये भगवान की अरेंजमेंट है। तो ये अनुभूति कैसे आती है, ये संतों के बीच में आ सकती है, संतों के संग में है, उन्हीं को ये अनुभूति प्राप्त हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा संतों का संग है दुनिया में, वो हमको पकड़े रखना चाहिए। ययाति महाराज, जैसी घृणास्पद अवस्था हमारी नहीं हो, इतना लांछन हमारे पर नहीं आए, ऐसी इच्छा है तो हमें ये करना ही है। क्योंकि ये मत समझना कि हमारे अंदर ययाति नहीं है, हमारे अंदर भी ययाति है। शुद्ध भक्त ययाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जो कामों की ययाति हम सबके अंदर बैठा हुआ है और पुकार रहा है, थोड़ा तो करो, थोड़ा तो चख लो, इतना तो कुछ पूरा नहीं है। इतने लोग कैसे बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार कैसे बोलते हैं, इतने साल चाय नहीं पिया, अभी एक बार पी लो बेटा, क्या है उसमें, इतनी साल चाय नहीं पिया आपने मंदिर में रहते हुए, अभी एक बार दिवाली में आए हो 25 साल के बाद में, तो पी लो चाय, उसमें क्या बड़ा शराब पी रहे हो आप। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, 50 साल हो या 25 साल हो या 100 साल हो, जो छोड़ दिया है उसको हम नहीं पी सकते। जो त्याग दिया है हमने, तुच्छ मानकर, त्याज्य मानकर जो छोड़ दिया है, कैसे पी सकते उसको हम लोग। उतनी अनुभूति अगर हमें चाहिए, स्ट्रेंथ हमारे अंदर, तो संतों का ही संग होना चाहिए। उसके बिना हमारे अपने ऊपर हम वो ना बोलने का काम नहीं कर सकते हैं। मना करने का काम करना है तो पीछे बल चाहिए। ये छोटा सा कुत्ता होता ना, वो बड़े कुत्ते पर कब भौंक सकता है? तीन तीन चार चार बड़े बड़े कुत्ते अगर छोटे पिल्ले के सामने आते हैं तो कौन से बल पर वो छोटा कुत्ता भौंक सकता है? अगर वो अपने मालिक के दो पैरों के बीच में आके खड़ा हो जाएगा तो वो बड़े बड़े कुत्ते पर भी भौंक सकता है, और बड़े कुत्ते भी डर कर भाग सकते हैं। ये मेरी आंखों से मैंने देखा हुआ है। तो वो बल लेता है किसी से, खुद कमजोर है, किसी से बल लेता है और उसके बल के आधार पर चैलेंज करता है माया को। अपने बल पर नहीं, गर्व पर नहीं, संतों के बल पर। तो वैसा बल हमको लेना चाहिए। इफ यू आर वीक, टेक द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रांग। अगर आप कमजोर हो तो बलवान आदमी का बल स्वीकार करो, उसका आश्रय लो। तो ये आश्रय की बात यहां पर की गई है। भगवान और भगवान के भक्त जो है वो सबसे बड़े आश्रय होते हैं। भगवान तो दिखते नहीं हमको, उनका अनुभूति हमको नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त और गुरु महाराज हमारे दर्शन में, उनका बल का आश्रय हम ले सकते हैं और उनके बल के आश्रय से हम बलवान हो सकते हैं और फिर माया को मना कर सकते हैं। और माया भी कैसी है, वो केवल कृष्ण भूलिया जीव को ही पकड़ती है। जो कृष्ण को याद कर रहा है उसको नहीं पकड़ती, वो उसको नहीं मारती। वो प्रेम सखी मुहन को मारत, जीतने से एक संग कहां लड़ेगी, ऐसा एक दोहा है ब्रज में। प्रेम सखी मतलब माया देवी। प्रेम सखी मुहन को मारत, जो मुर्दे है उनको मारती रहती हो। मुर्दे कौन है? जो भगवत भावना से जागृत नहीं है उसको मुर्दा कहा गया है। जीवत शव समान, वो व्यक्ति मुर्दा है जो भगवान को याद नहीं करता है। प्रेम सखी मुहन को मारत, जीतन के संग कहां लड़ेगी। जो जिंदा है, जो भगवान का नाम की याद करे, वही जिंदा व्यक्ति है, उसके साथ लड़ती नहीं है वो। जो भगवान का आश्रय ले चुके हैं उसके साथ माया लड़ती नहीं है। माया उन्हीं को पकड़ती है जो भगवान को भूलकर जिंदा रहने का और भोग लेने का प्रयास कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न है कोई? यस माता जी, माइक्रोफोन है उधर। माता जी प्रश्न कैसे पुकारेंगे आप, बोलिए। हाँ तो प्रश्न क्या है आपका? वो छोड़ते नहीं है, वो इंद्रियां जो है उसका जरूरत ही खत्म हो जाती है। इंद्रियों की नींद की जरूरत खत्म हो जा कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा चीज़ रखते हैं ताकि भगवान का ध्यान कर सके। इंद्रियों की भोजन की भूख जो है वो कम हो जाती है ताकि शरीर कम काम करे, अधिक समय फ्री रहे भगवान का ध्यान करने के लिए। शरीर कमजोर हो जाता है ताकि आप ज़्यादा यहाँ वहाँ मत डोले, एक ही जगह बैठ के भगवान का भजन करें। क्योंकि वॉलंटरी छोड़ना कब मुमकिन होता है? छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी इंद्रियों की जरूरत ही कम हो जाती है। व्हेन देयर इज नो नीड, अभी आप दो, अभी आपने पेट भर लंच खा लिया है, तो तो एक तरह से खाना छोड़ ही देते आप 4 घंटे के लिए, खाने खाई नहीं आप रहे, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, जरूरत ही नहीं आपको। उसी प्रकार से उस समय भूखी भूखी लगती नहीं, क्योंकि शरीर को जरूरत ही नहीं उतनी एनर्जी की। मेरी माताजी भी 90 साल की है, डॉक्टर हमारे जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो कहते हैं कि 600 कैलोरी की भी जरूरत शरीर को नहीं है, तो उनको आप फोर्स मत करो खाने के लिए, इतना इतना सा खाते हैं 2-2 चम्मच बस। आप देखिए बच्चा भी उतना कुछ ज़्यादा खाता है, क्योंकि शरीर की व्यवस्था बुढ़ापे में भगवान ने ऐसी की गई है कि सारी ज़रूरतें अपने आप कम हो जाती है, ताकि वो अधिक समय फ्री रहते हैं, हाजमे की शक्ति के काम से फ्री रहते हैं, नींद के घंटों से फ्री रहते हैं, तो जगे रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, और भगवान का याद करने के लिए अनुकूल समय होता है वो। वो कैसा है ना, आज के हमारे प्रवचन का विषय अलग है, आप प्रश्न अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। आज के हमारे प्रवचन का विषय जो है वो इंद्रियों की वासना कैसे कम करना हुआ है। यस, भगवान हमें अभी उनकी अनुभूति नहीं हुई है, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं जो गुरु हमारे बनते हैं। फिर गुरुजी भी नहीं मिलते, समझो गुरुजी भी भ्रमण में हैं, तो गुरुजी हमारे पर एक भक्त को रखते हैं ना कि इनके अंडर रहो आप, इनका ट्रेनिंग ले लो, इनके अंडर आज्ञा में रहो, तो उनके आज्ञा में रहना चाहिए। अगर आपको श्रद्धा है कि गुरुजी के प्रतिनिधि है, तो गुरुजी उनके मुख से आपको गाइड करते हैं, और अगर आपको श्रद्धा है कि ये मेरे गुरुजी हैं, तो उनके मुख से भगवान आपको गाइड करते हैं। ये श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा होगा तो भगवान आपको उनके तरफ से आदेश दे देते हैं। भक्तों के प्रामाणिक संघ में हमको रहना चाहिए हमेशा, तो ही हम माया से बचे रहेंगे। और अपने आप को अगर इतना बलवान समझते हैं कि अभी मैं तो 25 साल का भक्त हो गया, किसी की जरूरत नहीं, सब लोग नए जूनियर डिवोटीज हैं, तो निश्चित रूप से फंसेंगे हम लोग। हमको हर समय जूनियर सीनियर हमारे इक्वल सभी भक्तों की एक साथ जरूरत होती है, कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है। भरत महाराज अकेले थे इसलिए वो फंस गए, अगर के भक्त साथ में होता तो बोलता उनको, महाराज बस अभी हरण का हो गया, अभी छोड़ो उसको, आप भजन करो, कोई बोलने वाला नहीं था उधर, तो फंस गए वो। विश्वामित्र मुनि भी अकेला एकांत भजन कर रहे थे, इसलिए घुंघरू बजते ही गिर गए वो, कोई साथ में होता भजन करने वाला तो नहीं फंसते वो, उनको रोक लेता, अरे भैया क्या कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के तो ब्रह्म ऋषि बनने को आए हो, और अभी घुंघरू के पीछे क्यों पड़ रहे हो, ऐसा बोलने वाला को होता तो आप सुनते ना उसको। इसलिए किसी भी अवस्था में आप मत समझो कि अभी हमारा हो गया परिपूर्णता, डोंट थिंक लाइक दैट। ओके, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।